نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم دوستوں اور بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، ہر مسلمان کو تین چیزوں پر محنت کرنا پڑتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بھی ان تین چیزوں پر محنت کرنا ہوگا، اور محنت کرتے رہنا ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی تھوڑی سی محنت کر لے تو کام چل سکتا ہے۔ کچھ چیزیں تسلسل چاہتی ہیں، جیسے انسان کی زندگی کے لیے مسلسل کھانا چاہیے، یعنی روز چاہیے، کئی مرتبہ چاہیے۔ اگر روزانہ انسان کو کھانا نہ ملے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، بہت زیادہ فرق پڑ جائے، گیپ آ جائے تو صحت مند رہنا مشکل ہے۔ ایسے ہی دینی لائن کی چیزیں ہیں، ان کا بھی مسلسل ہونا ضروری ہے۔ دین میں سے ایک دین کا مذاکرہ بھی ہے، دین کی باتوں کا مذاکرہ، دین کی باتوں کی مجلس اور نشست، یہ مسلسل چاہیے ایمان والے کو، ایمان والے کو اور ایمان والی کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں اس مضمون کا، وہاں مومن مردوں کا ذکر الگ ہے، مومن عورتوں کا ذکر الگ ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر تو یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہوتا ہے، عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیمو کا جو لفظ ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اقیم نہ آتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مردوں کو کہا گیا، عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ آتو زکا، آتو جو ہے مرد کے لیے ہے، آتینہ رہتا عورتوں کے لیے، حالانکہ حکم کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، حکم اپنی جگہ پر فرض ہے، بڑا فرض ہے، مگر خطاب کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عموماً ایسا ہے کہ اگر مردوں کو بولے تو عورتیں بدرجی والا اس میں شامل ہوں گی، جب مرد کو بول دیے تو عورت کا کیا ہے مطلب رہیا رہتا ہے۔ بعض جگہوں پر عورتوں کو الگ سے اہتمام سے بیان فرمایا گیا، اس کام کی اہمیت بتانے کے لیے۔ تو جہاں دین کے مذاکرے کی بات آئی ہے، وہاں عورتوں اور مردوں کا ذکر الگ الگ ہے۔ تو کچھ چیزیں مسلسل چاہیے ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی یاد آ گئی تو ذکر کر دیا۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ دوسری ہے، وہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری، کچھ کام ہیں ہمارے، وہ تین طرح کے ہیں اسپیشل، تینوں پر محنت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک ایمانیات ہیں، جو چیزیں ماننے کی ہیں، چونکہ وہ دکھتی نہیں، ماننا ہے ہم کو، جو چیز نظر نہیں آ رہی ان کو ماننا، یہ مذہب کا ایک حصہ ہے بلکہ بنیاد ہے۔ مخبر صادق کی خبر کی یقین پر، خبر دینے والا چونکہ سچا ہے لہذا اس کی سچائی کے اعتقاد کی بنیاد پر ماننا ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے، انسین، اللہ کو نہیں دیکھتے ہم، جنت نہیں دیکھتے، جہنم نہیں دیکھتے، فرشتوں کو نہیں دیکھتے، किताबों के उतरने को हम नहीं देखते, तकदीर को हम नहीं देखते, मरने के बाद की जिंदगी को हम नहीं देखते, हमसे मतलब कोई भी इंसान नहीं देखता। फिर मानना जैसा के मानना चाहिए वैसे मानना, मानने के बस ये है ना, ये अच्छा ही है, मानने के दराजात हैं। मान लिया नहीं, जैसा चाहिए वैसा मानना। कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए कि उसका जो असर है, उसका जो तकाजा है वो पूरा कर सकना, वैसा मानना मोतबर कंसीडर है। उसका एक तकाजा होता है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी को पूरा करने वाला मानना। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खशयतिक मा तहूलु बिही बैनी व बैना मआसीक। या अल्लाह, मैं आपसे आपका डर मांगता हूँ। कितना मांगता हूँ? ये कितना डर चाहिए? कहने के इतना डर चाहिए कि गुनाह करने न दे। मा तहूलु बिही बैनी व बैना मआसीक, मेरे दरमियान और आपकी नाफरमानी के दरमियान हाइल हो जाए, इतना चाहिए। तो ऐसे ही अल्लाह को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, अल्लाह के फरिश्तों को मानना, अल्लाह के रसूलों को मानना, अल्लाह की तकदीर को मानना, जितने ईमानियात हैं साथ रहते हो, ईमानियात साथ है, जो ईमान मुफस्सल में याद कराए जाते हैं बच्चों को, बच्चियों को, हम सब ने भी बचपन में याद किए हुए हैं, लेकिन खुद ईमान मुफस्सल की तफसीलात भी होती हैं, उनके बारे में हम मुतवज्जे नहीं होते। एक ख़ास लेवल का मानना होता है, ख़ास दर्जे का मानना होता है। तकदीर पर मानना ऐसा होता है कि अगर कुछ हादसा पेश आ जाए तो अफसोस नहीं रहना, इतना तकदीर पर यकीन होना। ये कही रहता असो वाला माफा तक, अफसोस ना रहे। हमें तो छोटी छोटी चीज़ों पे अफसोस होता है, $10 कहीं हाथ गिर गए तो अफसोस हो जाता है। तकदीर पर ईमान ऐसा चाहिए कि अगर नेमत मिल जाए तो अकड़ पैदा ना हो, सदमा मिल जाए तो अफसोस ना हो, इतना तकदीर पर मानना है। पैसे मिल गए, अकड़ आ गई, हालात सही हो गए, अकड़ आ गई, गुरूर में आ गए, इतना क्या है, इतने तो मज़े हो गए, एक सेकंड में काम ख़राब हो जाता है, देखते देखते काम ख़राब हो जाता है। जिसने दिया है उसको लेने में कितनी देर होती है, वो अगर चाहे तो सेकंडों में ले लेता है। जिस सलाहियत को आदमी इस्तेमाल करके पैसे बनाता है, वो सलाहियत थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दें, अल्लाह में तो खिस्सा खत्म, पैरालाइज करते तो खिस्सा खत्म, सब कुछ रहने के बावजूद जॉबलेस कर दे तो खिस्सा खत्म, फायर हो गया बंदा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गुरूर बाकी नहीं रहना नेमत के मिलने पर, चूंकि वो नेमत अपनी जाती नहीं होती, अताई है, एहसान है उनका। और दूसरा ये है कि वो कभी भी जा सकती है, तो गुरूर की क्या बात है। तो तकदीर पर ईमान का एक नतीजा है, ख़ास असर है। रसूलों पर ईमान का एक नतीजा है, रसूल को मानते हैं। कैसे मानना है? रसूल को मानना ऐसा होता है कि रसूल की मुखालफत की हिम्मत ना रहे किसी भी चीज़, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ बोल के तकसीम नहीं रहती। सहाबा के पास छोटी चीज़ बड़ी चीज़, अहम चीज़ गैर अहम चीज़ की तकसीम रसूल के मानने में नहीं थी, माने मिलती है बात। ये बाद में फ़िक़ा के एतबार से दर्जा बंदी हुई, ये मुस्ताहब है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये गैर मुअक्कदा है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। ये दर्जा बंदी जो है वो दलील की ताकत के एतबार से बनी, और ये दर्जा बंदी जो है वो करने की फजीलत के एतबार से और न करने पर आदमी किस दर्जे की वईद का, सज़ा का मुस्तहिक है वो मुतय्यन करने के लिए बनी से हो। सहाबा के पास नहीं था ये फ़र्क, हुजूर ने ये किया बस वो करना था, वो कौन से दर्जे में था क्या है वो नहीं जानते थे, वो सहाबा को उससे कोई बहस नहीं होती थी। रसूल को मानना, हाँ आप अल्लाह के रसूल है मानना, वैसा नहीं होता। रसूल को मानना, मैं अपने लिए आपको अल्लाह का नुमाइंदा मानता हूँ, अपने लिए एक्सेप्ट करता हूँ आपके रसूल होने को कि आप अल्लाह के नुमाइंदे मेरे लिए हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अग्री अग्री हूँ उससे। रसूल के मानने में ये बात होती है, जैसे शादी में होती है बात कि कोई वाइफ हस्बैंड को अपने लिए एज ए हस्बैंड माने। एक मानना है, एक जानना है। हम दूसरों के बारे में जानते हैं कि फलां फलां का हस्बैंड है, लेकिन अपने हस्बैंड के मामले में खाली जानते नहीं बल्कि मानते हैं। अपनी वाइफ को वाइफ की हैसियत से जानते भी हैं, मानते भी हैं। दूसरे की वाइफ को मानते नहीं है, जानते हैं खाली कि वो फलां फलां फलानी फलानी की। रसूल को जानना है क्या? रसूल को जानना भी है, लेकिन जानना ऐसा है कि मानना है, और मानना ऐसा है कि रिसालत को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तब आपकी जो नुमाइंदगी है वो मेरी जात पर अप्लाई, हर हर लाइन में जिंदगी के हर शोबे में, तो वैसा मानना है। तो मानना है, जैसे मानने का हुक्म है वैसे मानना है। फरिश्तों को मानना, जैसे मानने का हुक्म है, मानने का जो लेवल है वैसे मानना। फरिश्तों के पूरे निज़ाम पर ईमान लाना, एक पूरी कायनात, एक पूरी दुनिया, जितने काम हो रहे हैं उनके पीछे फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों पर अल्लाह का हुक्म है। हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं, अमल लिखने वाले फरिश्ते हैं, अच्छे अमल लिखने वाले हैं, बुरे अमल लिखने वाले हैं, पानियों पे फरिश्ते हैं, पहाड़ों पे फरिश्ते हैं, हवाओं पे फरिश्ते हैं, गल्लों पे फरिश्ते हैं। दिन में फरिश्ते मुकर्रर हैं, रात में फरिश्ते मुकर्रर हैं, हर आदमी पर निगरान फरिश्ते हैं, कब्र में पूछने वाले फरिश्ते हैं, जन्नत के ज़िम्मेदार फरिश्ते हैं, जहन्नम के ज़िम्मेदार फरिश्ते हैं, वही लाने वाले फरिश्ते, सुर फूकने वाले फरिश्ते, मौत निकालने जान निकालने वाले फरिश्ते, बादलों को उठा के ले जाने वाले फरिश्ते, बारिशों को फैला देने वाले फरिश्ते, बारिश बरसाने के ज़िम्मेदार फरिश्ते, वही लाने के ज़िम्मेदार फरिश्ते, जान निकालने के ज़िम्मेदार फरिश्ते। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, एक उनके मातहत अमला होता है बहुत बड़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वही लाने के, लेकिन बाद में तब 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर आते थे। आमद रसूल जब नाजिल हुई 70,000 फरिश्तों के साथ आए थे। इसराइल अलैहिस्सलाम जब आते जान निकालने के लिए, ईमान वाला है तो उसके साथ कितने फरिश्ते, 500 फरिश्ते साथ होते हैं। 10,000 ईमान वाले मरे हैं, 10,000 के साथ आएंगे, आप उसका लश्कर अंदाज़ा करो। और उनको 10,000 आदमियों की जान निकालते वक्त जाना, 10 लाख के वक्त जाना कुछ मुश्किल नहीं। पूरे इंसान उनकी हथेली में होते हैं, हथेली की उतनी जगह में होते हैं पूरे इंसान, पूरी जानदार चीज़ें। हथेली में से चुनना क्या मुश्किल है, वहाँ का 10-20 कुछ भी मुश्किल। ये चार बहुत बड़े बड़े हैं, इब्राहिल और मिकाइल और इसराफील और इसराइल जो है ना, ये फरिश्तों में बहुत बड़े बड़े हैं। ये इनका हुजूम भी बड़ा है, इनकी साख्त बड़ी है। आम फरिश्ते, दूसरे फरिश्ते भी कुछ कम छोटे नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही स्पेशल है। फिर उनमें भी एक दूसरे से बहुत बड़ा बड़ा है। इसराफील अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से 12,000 गुना बड़े हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद अकेले इतने बड़े हैं कि अगर असली हालत में खड़े हो जाएं तो सर आसमानों पे निकल जाएगा ऊपर और पैर ज़मीन के नीचे निकल जाएगा। 600 बाजू हैं, 200 बाजू फैला, ये दो बाजू फैलाएं, मशरिक़ और मगरिब कवर हो जाता है, नज़र नहीं आता उसके बाद उसके पीछे का। उससे 12,000 गुना इसराफील बड़े हैं। ऐसा पुंगी में फूके तो सब उड़ा देंगे, आसमान ज़मीन उड़ा देंगे, सितारे उड़ा देंगे, सोलर सिस्टम उड़ा देंगे, पूरा यूनिवर्सल उड़ा देंगे। सोलर सिस्टम क्या चीज़ है? कहकशा उड़ा देंगे। सोलर सिस्टम को हिलाना खेल है क्या? सूरज को और सूरज के साथ के पूरे निज़ाम को हिलाना, कौन सी ताकत से हिला सकता है इंसान? वो खाली फूक के हिलाएंगे, मार के तोड़ के फैटा मार के नहीं, फूक के हिला देंगे, उड़ा देंगे उसको। फूकने में वो बात है उनकी, हदीस में मुखबिर सादिक, सच्ची बात बोलने वाले, ना उनको मुबालगे की ज़रूरत है, ना वो झूठ बोलते, गलत बयानी वानी है। मतलब बयानी का शायबा भी मुसलमान करेगा कि पता नहीं सही बोला गया नहीं बोला गया, ईमान चले जाता। हदीस है नहीं है, अगर इसका डाउट हो तो कंफर्म करना हो, इसका हक है मुसलमान को। भैया हुजूर बोले नहीं बोले, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोले मगर बोले बोल रहे, इसका मुसलमान को हक रहता है कि वो कंफर्म करे। लेकिन अगर कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये हुजूर बोले सो है, उसमें राई बाल बराबर भी अगर शक करा तो गया ईमान से। रसूल फरिश्तों पर ईमान, वही लाने वाले फरिश्तों पर ईमान, पूरा एक निज़ाम है। अल्लाह की किताबों पर ईमान, जो अल्लाह ने अपनी किताब में बयान फरमा दिया और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से समझा दिया कि इसका ये मतलब है। वांजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ जो जिक्र नाजिल किया है आप उसको बयान करने वाले हैं कि क्या है वो। हुजूर के बयान से पता चलता है, हदीसें पूरी कुरान पाक का बयान है। चाहे आप हवाला न दें कि यह बयान फलां आयत का है, यह बयान फलां, इसकी जरूरत नहीं है। हुजूर को उन्हें जो कुछ बयान कर रहे हैं वो आयतों की तशरीह है। तो जो आपने बता दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये चाहा ये नहीं चाहा, ये ऐसा करना है ये वैसा करना है, वो हो गई बात खत्म। किताब पर ईमान के इसके अलावा किसी और चीज पर उसके अगेंस्ट में आदमी मानता है गया, ईमान वाला नहीं रहता पूरा। ये भी यकीन करना होता है कि कामयाबी उसी के साथ जुड़ी हुई है, निज़ाम उसी के साथ कायम होगा। मसलन हुदूद है, हुदूद का मतलब सजाओं का निज़ाम। 5 गलतियों की सज़ा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, बकिया मुकर्रर नहीं। इसका कभी तज़किरा नहीं होता, इस वजह से मुसलमानों का जहन चलता ही नहीं इधर। जिसका भी मुज़ाकरा हो जाना चाहिए, होते रहना चाहिए ताकि पता चले। वक्त पड़ने पर खुद भी आदमी बसीरत पर रहे, 4 आदमियों को समझा भी सके, बता भी सके। गलतियाँ बहुत हैं, सैकड़ों हज़ारों हैं। जब वो गलती हो जाती है मुसलमान से तो जो सज़ा का निज़ाम है वो जो काजी वक्त है, हाकिम वक्त है, वो तजवीज़ करेगा कि इसको इसकी सज़ा क्या देना है। किसी को कम किसी को ज़्यादा चलता है उसमें। लेकिन 5 सज़ाएं ऐसी हैं कि जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, उसमें किसी को दखल नहीं देने की इजाज़त नहीं होती, नबी को भी नहीं होती, नबी भी नहीं दखल दे सकते। और वो 5 सज़ा, अगर उन 5 गलतियों की वो 5 सज़ा ना हो तो दुनिया में कभी भी अमन नहीं हो सकता। ये पत्थर पे लिखा दे सकते आप कहीं पे भी, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो बनाने वाला है उसको पता है सेटअप, वो इंसान की जान की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान की अकल की हिफाजत और इंसान की इज्जत की हिफाजत। ये सज़ा अल्लाह की तरफ से तय है। बेइज्जती की जाए तो उसकी सज़ा, बेअकली का काम किया जाए उसकी सज़ा, माल पर हमला हो उसकी सज़ा, जान पर हमला हो उसकी सज़ा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तय है। कुरैश की एक बहुत मालदार औरत ने चोरी कर ली थी, वो तो बाज़ मरतबा बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, थी मालदार लेकिन चोरी कर लिया उसने। हम तो पर चोरी गरीब करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है ये ज़माना बता रहा है कि गरीब होना ज़रूरी नहीं है चोरी करने के वास्ते। थोड़ी देर के वास्ते शट डाउन हो जाए तो बड़े बड़े शहर जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं वो चोरी मच जाती है, पूरा डाउनटाउन खाली हो जाता थोड़ी देर, आधे घंटे में डाउनटाउन खलास, ट्रक ला के लोग लेके निकल गए माल, ट्रक का ला के, तो पैसे नहीं हैं उनके पास, पैसे तो बहुत हैं उनके पास। एक ही ट्रक माल गायब हो गया अभी गुज़िश्ता साल के बाद, 2 साल पहले के किस्से में। अब हमारे शिकागो की बात बोल रहा हूँ आपको, फिर वो माल जो है ना वो 500 का माल 200 में बिक रहा है, 150 में बिक रहा है, वो कौन सा माल है वो जो बाहर मिल रहा है पैसे वाले हो के भी। खैर कुरैश की एक औरत ने चोरी कर ली थी, उसके ख़ानदान वाले आए, उन्होंने दरख्वास्त की कि आप जो पैसे बोलें जो जुर्माना बोलें आप ले लीजिए, लेकिन हाथ मत काटिए क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर दिखने वाली चीज़ है, बेइज्जती की चीज़ है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद से भी ये गलती हो जाएगी तो मेरे लिए मजबूरी है, मुझे हाथ काटना पड़ेगा। लो अन्ना फातिमा तो बिनत मोहम्मद, फातिमा तो बिनत मोहम्मद सरकत लकतातु यदा, अगर फातिमा बिनत मोहम्मद से भी ये गलती होगी तो हाथ काटना पड़ेगा, इसमें किसी का दखल नहीं रहता। उसका नतीजा ये है कि सोने की दुकान भी आप खुली रख के नमाज को चले गए ना तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, चांदी की दुकान को खुली रख के, पैसों को, कपड़ों को, गल्ले को, किसी भी चीज़ को आप खुला भी रख के चले गए, कोई हाथ डालने वाला नहीं, कौन अपनी रिस्क में डालेगा। इसका ताल्लुक जो है ना जुर्म और सजा के उस तनासुब से नहीं है, इसका ताल्लुक इंतज़ाम से है, इंसानों की माल की हिफाजत से है। इसके बगैर हिफाजत होती नहीं, हो ही नहीं सकती दुनिया में। बस गलतियाँ होती रहेंगी, पकड़ के जेल में डालते रहो, फिर निकल के आते रहेंगे, फिर चुराते रहेंगे, फिर उसको तो आदत हो जाती है जाने की, उसको पता चल जाता मैं अंदर गया तो मेरे को क्या हुआ था। अरे मजे हैं बोले, वहाँ पे भी खेलने का मैदान है, वहाँ पे जाने वाला हजाम आता है, वहाँ पे भी कपड़े धुल के आ जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना है, वहाँ पे टीवी देखने को है, ये है वो है, बड़ी सहूलत है यार वहाँ पे तो। काम भी नहीं है कुछ करने का, सुबह शाम रोटी है, फिर दंड बैठक बनाते रहते हैं, जिम करते रहते हैं वहाँ पे, तो बाहर निकल के फिर दादागिरी करना है ना, तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर होना जरूरी है, ये काम हो रहे हैं। तो ऐसा आदमी आके फिर चुराता है, फिर जाता है, फिर चुराता है। पूरी दुनिया में भाई से मजमू माल की बात नहीं है, कि एक दो दो कई कई दरवाजे कुफल डाल के रखने पड़ते हैं, उसमें जरा मिस्टेक हुई बोले तो गई चीज, जहनी सुकून नहीं। इज्जत पे हमला अगर इंसान की होता है, बच्चियों की होता है, औरतों की होता है, ऐसा इंतजाम है कि एक मरतबा किसी ने देख लिया ना तो उम्र भर ख्याल नहीं कर सकता। घर में अगर कोई मर्दाना नहीं भी है, औरतों पे कोई इज्जत के हमले का डर नहीं रहता। क़िसास का हुक्म, 5 सजाएं सिर्फ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर, इंतजामी चीज है वो। इंतजाम ऐसी चीज होती है कि इंतजाम में कंपेयर नहीं करते गलती में, और उसके उससे मुतालिका सजा को कंपेयर नहीं किया जाता कि ये इतनी है कि नहीं है। एक आदमी $100 चुराया का उसका हाथ काट दिए तो हाथ की कीमत $100 ही छेका, ऐसा कंपेयर नहीं करते। बाहर पेशाब करते हुए दिखे, पुलिस देख ली, रोड पे पेशाब कर रहे हैं, कुत्ता तो रोजाना पाखाना भी करते रहता है, पेशाब का क्या है, अपन ही कराते हैं। मगर पुलिस अपने को अगर देखी तो $200 जुर्माना है। अब कंपेयर करो $200 को पेशाब से जो बाहर हुआ है, क्या हिसाब है उसका। यहाँ पे तो $200 ही है, इंडिया में गए तो 15,000 रुपए है, तो 15,000 को बाहर रोड के ऊपर, रोड के उधर वो भी घास में हवा लगने के बाद घंटे भर के बाद खत्म भी हो जाता है उसका असर। देखा तो लड़ो युवस हुआ, जमीन खुश्क होती है वो पाक हो जाती है। 15,000 है वो गलती 15,000 की है वो, उसका ताल्लुक इंतजाम से है कि अगर ऐसी सख्त सजा नहीं दी गई तो लोग बाज नहीं आए, नहीं आए। देखो ये वजह है कि कभी आप छोटे बड़े किसी को आप जंगल में देहात वाले को किसी को नहीं देखेंगे पूरे अमेरिका में, यहाँ से वहां तक, पूरे मुल्क में यहाँ से वहां तक, कि कोई आदमी बाहर जो है ना अपने हाजत खजाए हाजत कर रहा है, नहीं करेंगे। डिसिप्लिन है वो, इंतजाम है वो चीज, ये चीजें ऐसी ही हैं। तो अल्लाह की किताब पर यकीन, ईमान, किताब पर ईमान का मतलब अल्लाह की किताब से जो जिंदगी दी गई, जो मुआशरत है, जो मामलात हैं, जो अखलाक हैं, जो अकायद हैं, जो इबादतें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो फराइज हैं, जो हराम हैं, जो कमाने के तरीक़े, जो खुशी के तरीक़े, जो गम की चीज़ें, जैसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई बताई हैं। किताब पर ईमान का मतलब ये होता है कि उससे ज़रा बराबर आदमी का जहन नहीं हट। ईमानियात उनको कहते हैं कि मानना, जैसे मानना है वैसे मानना। तो अब इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईमानियात में हमको मेहनत कितना करना पड़ेगा। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व अल-क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअथि बादल मौत। ईमान मुफस्सल जो याद कराते वही है, और ये टूटता है जैसे वजू टूटता है, जैसे नमाज टूटती है। नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसी कोई गलती हो गई जो नमाज तोड़ने वाली है तो टूटती नहीं, टूटती नमाज, टूटती नमाज, टूट गई नमाज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप, होती नहीं कंटिन्यू करने से, करते रहो नमाज कंटिन्यू करने से अगर टूट गई है तो होती नहीं, वो कंटिन्यू करने से क्या होता है। रोजा टूट गया, रोजा कंटिन्यू कर रहे हैं, एक तो गलती से खा लिया पी लिया तो टूटा ही नहीं वो, क्योंकि गलती से खाने पीने को टूटना कहते ही नहीं है, इस्लाम कहता वो माफ है। नहीं जानबूझ के खा लिए फिर रोजा कंटिन्यू कर रहे हैं, हज टूट गया हज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे नमाज टूटने के बाद में, नमाज कंटिन्यू करने से नमाज नहीं रहती, ईमान टूटने के बाद, ईमान टूटने के बाद ईमान कंटिन्यू समझने से ईमान नहीं रहता, उसको करना पड़ता है सही करके, इसकी तफसील जाननी होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मौजू है ये कि इस पर मुसलमान ध्यान ही नहीं दे रहा। ये मैं एक ख़ास पस मंज़र में भी बोला बात को, मिसाल के तौर पर कादियानी है कोई, कलमा पढ़ता है, उन्हें कलमा पढ़ रहा है ना भाई, उसको कैसा मुसलमान नहीं बोलेंगे, उन्हें तो कलमा पढ़ रहा है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रहता है, उसको कैसा मुसलमान नहीं बोलेंगे। भाई कलमा पढ़ रहा हूं नहीं, लेकिन ईमान टूट गया उसका, समझ आ रहा नहीं? कलमा पढ़ते रहने से ईमान टूट जाने के बाद रहता थोड़ी, जब तक कि वो जोड़ने का काम करना पड़ेगा ना पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी ये नहीं माना कोई तो ईमान टूट गया। नबी को मानना जरूरी है ना ईमान रहने के वास्ते, और नबी को वैसे मानना जरूरी है जैसे नबी है, तो वो खातिमुन नबी ये नहीं मान जैसे ईमान टूट जाता। अब ईमान टूट गया फिर भी कलमा पढ़ रहे, तो कलमा पढ़ने से टूटा हुआ ईमान नहीं जुड़ता जब तक के टूटे हुए जगह नहीं जोड़े। वजू टूट गया आदमी का, या नमाज टूट गई, नमाज में वजू टूट गया, अब नमाज कंटिन्यू करने से नहीं होगा, पहले वजू करना पड़ेगा, उसके बाद में वो नमाज चलती आगे, नहीं तो नहीं चलती। इन सात बातों में से किसी एक बात को जब डैमेज किया जाता है तो ईमान टूट जाता है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की तख्ती पर, जितनी चीजें होती हैं इनके मुतासिर होने का, इनके टूटने का क्या मतलब है? रसूल पर ईमान का मतलब होता है कि रसूल की ताजीम जरूरी है, रसूल की बात की ताजीम जरूरी है, रसूल की बात को सबसे बड़ा समझना जरूरी है। किताब पर ईमान में किताब पर, किताब के तमाम अहकाम को मानना जरूरी है कि हम मानते हैं। मानने के बावजूद अगर नहीं करा बंदा तो ईमान नहीं टूटता, गलती होती है, गलती से ईमान नहीं टूटता। नहीं माना तो ईमान टूटता है। एक आदमी अमेरिका में रहता है, अमेरिका के कानून को फॉलो मानता है कि हम अग्री करता हूं, लेकिन कोई कानून तोड़ दिया तो जुर्माना लग जाता है, फाइन हो जाता है, टिकट कट जाता है। और अगर कोई ये बोला कि मैं मानता ही नहीं कि ये कानून है, तो फिर उसको जुर्माना नहीं लगता और दूसरी कार्रवाई होती है। फिर बगावत की कार्रवाई दूसरी है। तो अगर कोई आदमी मानता है, किताब की हर बात मानता है, लेकिन कर नहीं पा रहा किसी वजह से, या तो जानबूझ के ही नहीं कर रहा, बगैर उजर के ही नहीं कर रहा तब भी, या कोई उजूर उसके साथ में चल रहा हो, चला हुआ है, आदत नहीं है उसको, जो कोई और वजह है, उसे ईमान नहीं टूटेगा। लेकिन कहे मैं नहीं मानता, ईमान टूट जाता फौरन। सुन्नत की कोई बात को मैं नहीं मानता, ईमान टूट जाएगा, क्योंकि नबी की बेइज्जती हो गई, बेताजीमी हो गई। दीन की कोई बात को नहीं माना कोई आदमी तो ईमान टूट जाएगा। हलाल खाना जरूरी है, मैं नहीं मानता, सब चलता है। अरे भाई जरूरी है, लेकिन अब मैं गुनहगार आदमी हूँ, खा ले रहा हूँ बल्कि बोले तो कुछ भी नहीं, मतलब खाली गुनाह है, कुछ भी कैसा नहीं, गुनाह बहुत बड़ी चीज़ है, खाली गुनाह, मगर गुनाह है, ईमान की हालत में है बंदा अभी, लेकिन मैं मानता ही नहीं इसको, बोले तो गया, ईमान भी गया, शादी भी गई, सब गया। बोल लेते रहो हमारी शादी भी है, ये भी है, वो भी है, बोले शादी भी टूट जाती है ईमान जाने से। मर्द करे ये काम या औरत करे, बहुत से लोग नमाज को नहीं मानते। अरे ये नमाज उमाज क्या लगा लेके बैठे भाई, तो नमाज फर्ज है लेकिन नहीं पढ़ी जा रही, मैं गुनहगार हूँ, इससे आदमी मोमिन रहता है, लेकिन मैं नहीं मानता। अरे हम लोग नमाज रोजा वहाँ छोड़ के आए तो तुम लोग फिर यहाँ लेके आ गए। एक मरतबा गश्त में गए थे हम लोग, एक मुसलमान के पास गश्त में गए, तो शिकागो की बात है, उन्हें क्या बोल रहा, अरे हम लोग वहाँ छोड़ के आए इंडिया में, तो फिर लेके आए क्या हो तुम लोग, तबलीग वाले, तो मुसलमान है वो, खालिस गैर मुस्लिम है, प्योर गैर मुस्लिम है, उसमें शक नहीं करना है, ऐसा बोलने वाला गैर मुस्लिम हो जाता है। एक डॉक्टर साहब पास गए थे हम गश्त में, ये भी कई साल पहले की बात है, देखो भाई तुम लोग मेरे पास आए गलती करे, ख़राब लोगों के पास, गंदे लोगों के पास जाना, जाके उनको समझाए तो अच्छा है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास आना फजूल है आपका, अपने आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, जमात में गए थे हम गश्त में, मैं कभी कोई गलती करता ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत ही हम्बल है मेरी तबीयत, और हेल्पिंग नेचर का बंदा हूँ मैं, किसी को सताता नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी का ज़्यादती नहीं करता, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पर, मैं कभी किसी गलती में गया नहीं आज तक। बातों में उनसे पूछे कि डॉक्टर साहब आप नमाज कौन सी मस्जिद में अदा करते हैं, 26-27 साल से तो मैं आज तक कभी मस्जिद को ही नहीं गया, 26-27 साल से मैं आज तक कोई मस्जिद कोई गया ही नहीं, बोले मैं बहुत अच्छा हूँ, जरूरी गलती नहीं है मेरे अंदर, नमाज को फ़र्ज मान ही नहीं रहे। एक साहब के पास गए, बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी, उन्होंने भी डॉक्टर, इंजेक्शन वगैरह गरीबों को जो है ना, ये इंडिया की बात बोल रहा हूँ मैं, पैसे नहीं है तो पैसे नहीं लेते थे, इंजेक्शन देते थे, बराबर दवा देते थे, प्रिस्क्रिप्शन देते थे, पैसे नहीं लेते थे, गरीब से पैसे नहीं लेते थे, जितने हैं उतने ले लेते थे। हम एक मरता वहाँ पहुँच गए साथियों के साथ, तो बोले ये जो फ्री में इंजेक्शन दे रहा हूँ लोगों को, ये जो गरीबों की खिदमत कर रहा हूँ, क्या नमाज से कम समझ रहे हैं तुम लोग? डॉक्टर है लेकिन उल्लू का पट्टा है, क्या कर सकते? तो न मानने का मतलब ये होता है कि किताब को मान लेना जैसा कि मानना है, रसूल को मानना जैसा कि मानना है, फरिश्ते को मानना जैसा कि मानना है, अल्लाह को मानना जैसा कि मानना है। तो एक जिम्मेदारी यह है कि अपने जो ईमानियात हैं उन ईमानियात पर नजात मौकूफ है, उसके बगैर नजात नहीं होने वाली है। तो अपने ईमानियात को मजबूत करते रहना और उनके अंदर कुव्वत लाते रहना है। और एक दूसरी चीज़ है, उसको इस्लामियात कहते हैं, करने से मुताल्लिक जो दीन है, ईमानियात मानने से मुताल्लिक जो दीन होता वो, और इस्लामियात करने से मुताल्लिक जो दीन होता वो। इस्लाम करने का नाम है, ईमान मानने का नाम है। नमाज पढ़ना फ़र्ज है ये मानना है, नमाज पढ़ना ये करना है, रोज़ा फ़र्ज है ये मानना है, रोज़ा रखना ये करना है, ज़कात अदा करना फ़र्ज है ये मानना है, जब आदमी साहिब निसाब हो उस पर हौला ने हौल हो जाए, एक साल गुजर जाए तो, और वक्त आने पर ज़कात देना ये करना है, इसको इस्लामियात कहते हैं, इस्लामियात करने का नाम। तो जो इस्लामियात हैं उनकी तफसीलात जान के उस पर जमना, उनको करते रहना। हर एक में बड़ी तफसीलात हैं लेकिन मैं उसमें इस वक्त जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं इस तीसरी एक तीसरी चीज़ का मुजाकरा करना चाह रहा हूँ, जो तीसरी चीज़ ज़रूरी है, चूँकि अल्लाह के तौफीक से ईमानियात जैसा भी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, हम सब के सब बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, यहाँ जितने लोग सुनने सुनाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानियात रखते हैं, ठीक है उसमें तो कमज़ोरी है लेकिन ईमान तो है, पूरी बात मानते हैं। इस्लामियात पर भी हमारे नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की आदत है, रोज़ा रखने की आदत है, ज़कात देने की आदत है, हज किए हुए हैं, बहुत ही कम साथी होंगे जिन्होंने हज नहीं किया, और माँ बाप के हकूक़ अदा करना, बीवी बच्चों के हकूक़ अदा करना, हलाल कमाना, हलाल खाना, इसका अहतमाम करने वाला ये ग्रुप है। अगरचे कमज़ोरियाँ उसमें भी हैं, तो हमें अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो मुज़ाकरा करने से, हिम्मत करने से, इल्म हासिल करने से, अमल की कोशिश करने से, अमल का माहौल बनाने से हासिल होगा। एक तीसरी जिम्मेदारी और है जो इस वक्त मैं इसका मुज़ाकरा करना चाह रहा हूँ। असल में मैं एक हदीस शरीफ का तर्जुमा कर रहा हूँ, उस हदीस शरीफ के हदीस शरीफ पढ़ के उसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, बस खाली उसके माना अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ है कि सिफत एहसान अपने अंदर पैदा करो। सिफत एहसान क्या है? ये बड़े लोगों को ज़्यादातर ये काम है, उम्र बड़ी हो गई, शादीशुदा हो गए, बच्चे वाले हो गए, औरतें हैं, मर्द हैं, वक्त अच्छा खासा निकल गया है ईमान में, तो भाई ये काम तो बहुत ज़रूरी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये पैदा करना है, इसको सिफत एहसान कहते हैं। सिफत एहसान क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, इसलिए कि अगरचे कि तुम उसको नहीं देख रहे हो लेकिन वो तो तुम्हें देख रहा है। जब वो तुम्हें देख रहा है तो ये समझना कि तुम उसको गोया देख रहे हो, अगर देख रहे होते तो कैसे करते, वैसे करना काम, क्योंकि वो तो देख रहा है। अगर आप देख रहे हो कि ये देख रहे हैं और उनका मैं ये काम कर रहा हूँ तो कैसे करते, वैसे करो, क्यों, वो तो देख रहा है। पहले तक उनतरा फिर नहीं हो रहा, ये अपने ईमान में पैदा करने वाली क्वालिटी है और अपने इस्लाम में पैदा करने वाली क्वालिटी है, इस्लाम के हर हर अमल में पैदा करने की क्वालिटी, यानी ईमानियात में और इस्लामियात में क्वालिटी लाना, ये तीसरी जिम्मेदारी है और हम सब हम पर फ़र्ज है। ये वो मौजू है जिसकी तरफ तवज्जो आमतौर पर नहीं दी जाती, उसका मुजाकरा मकसूद है आज। पहली चीज़ें भी दीन की ही हैं और अहम बात थी, लेकिन हम इस वक्त जो जिस बात का मुजाकरा करने के लिए गोया बैठे, जहनी तौर पर तैयार हैं, हमारे मेरे जहन में इस वक्त जो बात अल्लाह ने डाली थी वो ये थी कि इस टॉपिक पे मुजाकरा हो, उसको कहते हैं सिफत एहसान। वो ये है कि इबादत ऐसी होना गोया कि अल्लाह पाक देख रहे हैं। आ जाओ ज़रा सामने आके, ज़रा जगह भर दो, तबलीग वाले हैं ना तुम लोग, मालूम है मैं दूसरों के साथ बेअदबी होती बल्कि नहीं बोल रहा था, मगर तुम्हारे से बोल रहे थे। जब मजमा जमा हो के करीब करीब होके जब बैठता है ना तो सुनाने में भी मजा आता, सुनने में भी मजा आता, और एक इज्तिमाइयत का एक माहौल, एक नूरानियत होती है जिसका खास असर पड़ता है। आप कभी दूर बैठ के सुनते हो, सुन के देखो, और कभी करीब बैठ के सुन के देखो, जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। वो फर्क सुन्नत की इत्तेबा का है। फिर कोई आदमी जॉब से आया है, किसी के कमर में दर्द है, बाज़ ऐसे हालात भी होते हैं, कोई आदमी सोच रहा है कि चलो जरा फुर्सत से बैठ के आराम से सुनते, ठीक है भाई, नहीं सुनने से तो आराम से बैठ के सुनना का नहीं होता। ये तीसरी जो चीज़ है वो बहुत अहम है और ज़िंदगी में करने का काम है, बड़ा काम है। अगर किसी ने ये काम कर लिया तो बहुत बड़ी बात अल्लाह पाक ने गोया उसको अता फरमा दी। और दीनदारों के लिए असल ये मसला बहुत अहम है। जो मजहबी लोग हैं, मजहबी साथी हैं, पाबंद हैं, सौ मसलात के पाबंद हैं, फिक्र रखने वाले हैं अपने बारे में भी, अपने औलाद के बारे में भी, अपने मस्तूरात के बारे में भी, मस्तूरात अपने घर वालों के बारे में भी फिक्र रखने वाले हैं दीन के बारे में, कि भाई ठीक है दुनिया तो रहना, खाना पीना भी अच्छा, कमाना भी अच्छा, रहना भी अच्छा, लेकिन दीन भी रहना ज़रूरी है, दीन पर चलना ज़रूरी है, दीन पर ज़िंदा रहना, दीन पर मरना ज़रूरी है, ऐसी सोच वाले साथी, और हम सब तकरीबन ऐसे ही हैं अल्लाह की तौफीक से, तो हमारे ज़िम्मे में ये क्वालिटी को मेंटेन करना है, इसके ऊपर गौर फिक्र करना, तवज्जो देना, इसके हासिल करने का तरीक़ा जानना, इसके असबाब इख्तियार करना। वो ये है कि अल्लाह पाक की इबादत ऐसे ही करना है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदा देख रहा है। और जब भी इबादत का लफ्ज़ बोलते हैं हम, तो हमारे जहन में नमाज आती है कि नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। सिर्फ नमाज का नाम ही इबादत है क्या? सिर्फ नमाज का नाम ही इबादत नहीं, नमाज भी इबादत है, नमाज बड़ी अहम इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, कुरान पाक की तिलावत भी इबादत है, एतकाब भी इबादत है, नज़र भी इबादत है, कुर्बानी भी इबादत है, तस्बीह पढ़ना भी इबादत है, ज़िक्र भी इबादत है, दुरूद शरीफ भी इबादत है, तालीम देना भी इबादत है, तालीम लेना भी इबादत है, ये तो सॉलिड इबादतें हैं। दीन की मेहनत करना इबादत है, अल्लाह के रास्ते में जाना इबादत है, अमर बिलमारूफ इबादत है, नहीं यानी मुनकर इबादत है। और कुछ चीज़ें इबादत अपनी ज़ात में नहीं है लेकिन इबादत को शामिल हैं, जो हाजतें हमारी हैं, ज़रूरतें हैं, वो इबादत नहीं कहलाती, इबादत का सवाब उनमें है। जैसे कमाना है, कमाना हमारी ज़रूरत है, असल इबादत के तौर पर मुकर्रर नहीं हो, लेकिन कमाने में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये इबादत को शामिल होता है, इबादत का सवाब उस पर मिलता है, इबादत में कंसीडर हो जाता है वो कमाना जो अल्लाह के हुक्म के साथ होता है। जैसे लंच अवर जॉब में शामिल हो जाता है, कंसीडर हो जाता है, जॉब में लंच लेना कोई जॉब नहीं है लेकिन जॉब में कंसीडर हो रहा है, आप उसको उसकी पे मिल रही है, क्यों? इस वास्ते कि आप हुक्म के मातहत कर रहे हैं। कोई आदमी खाली लंच लेके खाके खाते बैठे वहां जाके काम कुछ भी ना करे तो उसको मिलेंगे क्या पैसे? पैसे तो जब होगा जब जॉब के साथ होगा। इसलिए कस्बुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा है, फराइज की अदा करने के साथ अगर आप कमाई कर रहे हैं तो वही भी इबादत है। शादी करना, खाना पीना, आराम करना, ये हमारी ज़रूरतें हैं मगर इबादत में शामिल होते हैं, उसको हुक्म इबादत कहते हैं, इबादत का हुक्म इन पर रहता है। एक सॉलिड इबादत होती है और एक इबादत का हुक्म होता है उस पर। सॉलिड इबादत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का हक है, राइट्स हैं, राइट्स में से अल्लाह के, और जो अल्लाह का राइट है, अल्लाह का हक है अपने मखलूक पर, अपने हम उनके पैदा किए हुए हैं, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे खालिक हैं, वो हमारे रब हैं, हमको कुछ भी जिम्मेदारी लगा सकते हैं, तो हमारा उनका हक है ये इबादत कराना। तो इबादत को कुछ नहीं मिलता दुनिया में ज़ाहरी तौर पर, फौरन फौरन का फौरन, इबादत की वो खसूसियत है। अब नमाज पढ़े मगरिब की, क्या मिला? मिलेगा? मिला नहीं, मिलेगा, वादा है कि मैं दूंगा। और जो दुनिया भी एतबार से फौरी तौर पर जो वादा है वो उसका शेड है, इसका असर है, वो बरकत है, वो उसकी साइड इफेक्ट है, उसका बेनिफिट्स कह लीजिए। रोजे का क्या समझ? कुछ भी नहीं मिलता। ज़कात अदा कर तो क्या? कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ कुछ नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, समझ यहाँ नहीं मिलता। हज करे तो जाने कैसे? देख देख बाहर के एतबार से मिलने का कुछ भी नहीं होता। इबादत में करना होता है कुछ, फौरी तौर पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये कमाना, ये खाना, ये सोना, बीवी बच्चे शादी भी, इसमें अपने अपनी हाजतें हैं ये, इनको इबादत का हुक्म है। जब इबादत का हुक्म हुआ तो ये भी इबादत में शामिल हुआ। लिहाजा सिफत एहसान जो है कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ऐसी करना है, गोया अल्लाह तबारक व ताला को ये देख रहा है। तो तिलावत के वक्त में भी इसी फीलिंग के साथ में तिलावत करना, जिक्र के साथ में भी इसी जिक्र में भी इसी फीलिंग के इसी एहसास के साथ में जिक्र करना, कमाने के अंदर भी इसी एहसास के साथ में कमाई का वक्त गुजारना, पूरे 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी आदमी जॉब में जितना भी टाइम दिया हुआ है उसका ध्यान पूरा इस बात पे हो कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहे हैं, और ऐसे अंदाज से उस काम को करना कि गोया मैं अल्लाह के सामने वो काम गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के सामने तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि जब वो देख रहे हैं तो उनके सामने तो मैं हूँ ही हूँ, बीवी बच्चों के साथ में अल्लाह तबारक व ताला के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, बीवी का अपने हस्बैंड से ताल्लुक, हस्बैंड का अपने बीवी से ताल्लुक, माँ बाप का अपने औलाद से ताल्लुक, औलाद का अपने माँ बाप से ताल्लुक, अल्लाह तबारक व ताला के सामने जो हमारी ज़रूरतें हैं उसमें अल्लाह ताला ये नरमी करते हैं कि तुम अपनी ज़रूरतें मेरी इजाज़त के तहत में पूरी कर लो, अगरचे कि आम इंसान आम इंसान के सामने उस चीज़ को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे सामने कर सकते हो, ये तुम्हारी अपनी ज़रूरतें, एक ख़ास इल्म है जो दिया गया, क्योंकि हज़रत साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन को जब अल्लाह ने फरमाया था कि तुम कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो हज़रत साहबा और साहबियात को इस्तिंजा करना मुश्किल हो गया, कैसे अल्लाह सामने हैं कपड़े के साथ हटाना ये मसला हो गया, तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुश्किल हो गए, इतना उनको शर्म आ गई, इतना उनको हिजाब हो गया, चूँकि बात पक्की उनके दिमाग में बैठ जाती थी, अपने सब भूल जाने की आदत नहीं थी, लोगों से बोल दिए तो बोल दिए, मान लिए तो मान लिए, देख रहे हैं तो देख रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इस इल्म में और एक इल्म दिया, ऐड किया, और ऐड करके फरमाया कि देखो इस वजह से जो तुम्हारी बशरी तकाजे हैं ना, ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर लो अगरचे कि मैं देख रहा हूँ। वो क्या उस इल्म में और इल्म क्या ऐड किया, अला इन्नहुम यसरून सुदूरहुम लियस्तक़फू मिन्हु, वो अपने सीनों को लपेटते हैं, दोहरा करते हैं ताकि छुपें वो उससे, अला हीना यस्तक़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिरून व मा युलिनून, अल्लाह ने फरमाया कि तुम कपड़े हटाने से इसलिए शर्मा रहे हैं कि कपड़े कैसे हटाना, तो तुम कपड़े पहने से मेरे कपड़े अगर पहने हुए रहे तो मेरे से क्या छुपा हुआ है, ये अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह के पास छुपने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई चीज़ छुप नहीं सकती अल्लाह से, कभी भी किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में नहीं छुप सकती, पहाड़ों के दामन में चली जाए, समंदर की तहों में चली जाए, ज़मीन के अंदर चली जाए, पार्टीशन में चली जाए, सख्त से सख्त चीज़ में, घट से घट चीज़ के अंदर दाखिल कर दें आपके, छुपने का वहाँ कुछ नहीं है, अंधेरे में कर दें, जितना उजाले में उजाला है उनके पास उतना अंधेरे भी उजाला ही है उनके पास, जितना उजाले में वो देखते हैं अंधेरे में भी उतना ही देखते हैं वो, उजाला भी उनके नूर से उजाला है और अंधेरा भी उनके नूर से अंधेरा है बहुत अजीब बात ही, मगर बात यही है, अल्लाह तबारक व तआला के एक नाम का असर दिन है, अल्लाह तआला के दूसरे नाम का असर रात है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका बिस्मिकल लज़ी वदअ्तहु अलन नहारि फस्तनारा व अलल लैलि फअज़लमा, या अल्लाह मैं आपके उस नाम का वास्ता दे के आपसे मांगता हूँ कि आपने उसको दिन पे रखा तो वो दिन बन गया, रात पे रखा तो वो रात बन गई। अल्लाह पाक के लिए उजाला दूरी छुपना जो है ना ये नहीं होता, अंधेरा उजाला दूरी नज़दीकी कोई चीज़, इसी तरह अल्लाह ताला से कोई चीज़ दूर नहीं होती, जो चीज़ करीब है वो करीब है, जो दूर है वो भी करीब है, हमारे हिसाब से नज़दीक दूर है, अल्लाह के हिसाब से कोई चीज़ दूर नहीं होती, अल्लाह से अल्लाह का अर्श जितना करीब है हम भी उतना ही करीब है, कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह से अल्लाह का अर्श जितना करीब है हम भी उतने करीब हैं, पूरी की पूरी कायनात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से है, तो इसलिए वो सब उनका मामला एक ही है। वो थोड़ी सी वजाहत मैं इसकी करूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको, अब शिकागो से मिनियापोलिस दूर है थोड़ा सा मेडिसन के मुकाबले, न्यूयॉर्क और ज़रा दूर है, कैलिफोर्निया और थोड़ा दूर है, अमरीका से अपना इंडिया बहुत दूर है, मक्का मदीना वह भी बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है और डबल दूर है, लेकिन अगर आप ज़मीन से पूछे, ज़मीन को अकल दे के ज़मीन से पूछे आप कि तेरे से मिनियापोलिस शिकागो न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया फिर यहाँ से इंडिया फिर यहाँ से पाकिस्तान फिर यहाँ से मक्का मदीना कितनी दूर है, क्या बोलेंगी ज़मीन, मेरे को तो सब बराबर है भाई, मैं तो जमीन पे ही है। मक्का मदीना भी जमीन पे है, कैलिफोर्निया भी जमीन पे है, हैदराबाद भी जमीन पे है, पाकिस्तान भी जमीन पे है, सब जमीन। उसके लिए कोई दूर, क्योंकि सब मेरे मेरे गोद में है सब। ये जमीन पे जो चीज़ है वो जमीन के लिए दूर नहीं है, अपने लिए नज़दीक दूर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो चीज़ है वो तो तुमसे दूर नहीं है, लेकिन चांद कितनी दूर है? वो तो है भाई, दूर है। मिर्री कितनी दूर है? हाँ वो भी दूर है। अतारित, जोहरा, मुश्तरी दूर है काफी, बहुत से दूर है, बहुत से दूर है, बहुत से दूर है, बहुत से दूर। लेकिन अगर आप सोलार सिस्टम से पूछे, निजामे शमसी से पूछे पूरे, कि चांद तेरे से कितनी दूर है, जमीन तेरे से कितनी दूर है, मरीख तेरे से कितनी दूर है, क्या बोलेंगे? अरे भाई ये सर्कल ही बन के मैं हूं, ये तो मेरे गोद में है। चांद भी मेरी गोद में है, मरीख भी मेरी गोद में है, अतारित भी मेरी गोद में है, जोहरा भी मेरी गोद में है। एक जोहरा सितारे का भी नाम है, एक जोहरा अपने पास में भी रहती है। सोलर सिस्टम के लिए पूरा जो है ना, सोलर सिस्टम पूरा, चांद, मिर्री, जोहरा, अतारित, मुश्तरी, जमीन, और ये सब उसकी गोद में है। तो सोलर सिस्टम जिस कहकशा में है, उस कहकशा से अगर आप पूछेंगे तो उससे हटके जो पूरा निजाम इसके साथ में मिला हुआ है वो उसकी गोद में है। पूरी कायनात जो है ना, असल में अल्लाह तबारक व ताला के पैदा करने से पैदा है, उनके गोद में है। अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ दूर नहीं होती कभी भी, और अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपती नहीं। तो अल्लाह ताला ने यह इल्म दिया हजरत साहबा को कि तुम अगर कपड़े पहने हुए हो तो भी मुझसे छुपे हुए नहीं हो, लिहाजा अब तुमको तखारा तहारत का तकादा है तो भाई पूरा कर लो, बस थोड़ा हया शर्म का लिहाज रखो, थोड़ा हमारी तालीमात का लिहाज रखो, हमारे नबी के तरीक़े का लिहाज रखो, बस ये है। मियाँ बीवी के रिश्ते हैं कायम कर लो, मगर हया शर्म के साथ रहो, बदतमीज़ी बेहयाई के साथ मत रहो, मगर वो हकीकत है। अंताबुदल्ला कान का तरह हमें वो चीज़ें भी हैं सब, तो कमाने में, खर्च करने में, घर में, बाहर में, अल्लाह तबारक व ताला के आंखों के सामने होना, इसको सिफत एहसान कहते हैं। इससे इस्लाम की क्वालिटी मेंटेन होती है और ईमान की क्वालिटी मेंटेन होती है। ये सीखना है मुझे और आपको, मेहनत करने की चीज़ है ये भी, जैसे ईमानियात मेहनत करने की चीज़ है, इस्लामियात मेहनत करने की चीज़ है, एहसानियात कहते हैं इनको, एहसानियात मेहनत करने की चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला का ध्यान सीखना, अल्लाह तबारक व ताला के क़ुर्ब का इल्म सीखना, उनकी नज़दीकी का इल्म सीखना कि वो करीब हैं, वो अक्रब हैं, वो मुहीत हैं, वो साथ हैं, वो अव्वल हैं, वो आखिर हैं, वो ज़ाहिर हैं, वो बातिन हैं, वो समीअ हैं, वो बसीर हैं, वो अलीम हैं। हर वक्त बंदा अल्लाह तबारक व ताला के पास हाजिर हो जाए, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, कहीं पर भी हम जाए, कहीं भी हों, किसी भी जगह जाकर किसी भी वक्त में आप ये सोचें कि अल्लाह मियाँ कहाँ हैं। हदीस में है कि आप अल्लाह मियाँ को अपने सामने पाओ, ये फज़लुल्लाह तजिदहु तिजाहक, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। जब मैं इंडिया से आके एक हफ्ता हो रहा, वहाँ था तो वहाँ पे नमाज में अल्लाह मैया का नाबुद वैया का नस्ता है, वहाँ पे सुबहान रबी अल्लाह, वहाँ पे सुबहान रबी अल्लाह, कहाँ है अल्लाह मियाँ? तो यहाँ हैं। वहाँ से एयरपोर्ट को गए, वहाँ नमाज़ पढ़ना पड़ा, जहाज़ में नमाज़ पढ़ना पड़ा, कहाँ है अल्लाह मियाँ? तो यहाँ हैं। अल्लाह मानता साहिब उफ़ी सफ़र, ये अल्लाह मियाँ आप साथी होते हैं सफ़र में, हदीस में ही है ना। अमेरिका को आ गए, शिकागो को आ गए, यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर अल्लाह मैया का नाबुद वैया का नस्ता है, आप पढ़े तो आपके पास, आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास, कहीं पे भी जाओ, मक्के जाओ, मदीने जाओ, शहर में नमाज़ पढ़ो, या नमाज़ पढ़ो, ये मस्जिद में पढ़ो, वो मस्जिद में पढ़ो, ऑफिस में पढ़ो, घर में पढ़ो, एहफज़ुल्लाह तजिदहु तिजाहक, अल्लाह तबारक व ताला को अपने सामने पाओ। ये एक हकीकत है, लेकिन हमें याद नहीं रहता कितनी बड़ी भूल में हैं हम और कितनी बड़ी दूरी में हैं। नज़दीक होके दूर हैं, करीब होके दूर हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला से हम कभी दूर नहीं हो सकते। मगर फिर क्यों हम अल्लाह तबारक व ताला को नहीं देख रहे हैं, अल्लाह ताला को याद क्यों नहीं रख रहे हैं, अल्लाह ताला का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम उसको सीखते नहीं। तो जैसे और चीज़ें सीखने के तौर तरीक़े है, इसको भी सीखने का तौर तरीक़ होता है, ये सीखने की चीज़ है। क्योंकि जब इसको सीख लिया जाता है तो फिर आदमी का ईमान कामिल होता है, फिर आदमी का ईमान कामिल होता है, उसका हर अमल कामिल होता है, उसका यकीन कामिल होता है। जब ये सिफत एहसान सीखते हैं तो फिर नमाजों में ख्यालात नहीं सताते हैं, सिफत एहसान की कमी से नमाजों में ख्यालात आते हैं। लोग बोलते नमाजों में ख्यालात आते हैं हमेशा, कुछ इलाज बताओ। उसका इलाज सिफत एहसान सीखना है। जब तक सिफत एहसान नहीं सीखेंगे वो तो सताते ही रहेंगे। अगर सिफत एहसान सीख लिए तो ख्यालात सताते बोले तो आपको समझ में नहीं आता कैसा सताते। उसकी खसूसियत है वो। जब मैं अल्लाह के सामने हूं तो फिर मैं जाऊं कहाँ, जाता कैसा हूं बाहर। हजरत सूफी साहब हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा था नमाज में ख्यालात सताते हैं, तो हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया था कि नमाज शुरू हो गई बाद फिर ख्याल कैसा आता, नमाज शुरू हो गई बाद फिर ख्याल कैसा आता पूछ रहे। उनको याद ही नहीं है कि नमाज शुरू होने के बाद ख्याल भी आता होता। हम आप अल्लाह के सामने हैं तो फिर आपको ख्यालात कैसे आते, सामने रहे तो ख्यालात कैसे आते, इधर उधर के बोल रहे हैं। अब उनको कैसा बोलना हम, हमारा क्या हाल है। अपना हाल ये है कि इतना अरसा गुजर के भी अपन जान के वही है। हनोज रोजे अव्वल, हनोज रोजे अव्वल का मतलब वो जब कायदा पढ़ाते वक्त बच्चों के उस्ताद बदलते ना अपन, तो एक कायदा पढ़ाने के बाद दूसरे उस्ताद के बाद उन्हें फिर शुरू से पढ़ाता, उसके बाद तीसरे उस्ताद के बाद उन्हें फिर शुरू से पढ़ाता। हमारे यानी अपने बच्चे आमतौर पर कई कई मरतबा कायदा पढ़ते हैं, उन्हें उन्हें गया उन्हें भी खत्म करा, उसके बाद गया तो उन्हें भी खत्म करा। नहीं बोले उसकी तजवीज पे भरोसा नहीं, मैं खुद पढ़ा लेता हूँ, तो फिर पढ़ाता, फिर दूसरा उस्ताद आगे होता नहीं उन्हें सही नहीं पढ़ाया। नाजरे का भी वही हाल होता है, हिफ्ज का भी वही हाल होता अपने बच्चों का। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत से सुकुम और कमजोरियाँ अपने अंदर रखता है, उसमें से एक ये भी है। दुनियावी तालीम में ऐसा नहीं होता, भाई बच्चा पढ़ लिया उसके पास सर्टिफिकेट, भाई पहली फर्स्ट पास कर लिया उसने तो उसको सेकंड में ही जाना है ना। यहाँ पे हमारे पास हिसाब दूसरा रहता है। मेरे पास फोन हो तब मेरे को इत्मीनान होता, तो उसके पहली जमात चलते रहती है उसकी कई कई साल तक। तो दीनी दीन के मामले में भी हम लोग ऐसे ही हैं। हनोज रोजे अव्वल बोलते हैं उसको, पहला दिन है आज। पहले इसकी मशकें कराई जाती थी, इसके मुराकबे होते हैं, बैठ के सोचा जाता है बाज़ हफ्ता, लिसन के तौर पर सोचना होता है कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, उसको मुराकबा कहते हैं। अल्लाह तबारक फताला का जिक्र होता है, ध्यान एक तरफ करने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, उसको उसको शगल कहते हैं। अशगाल उसी की जमा, शगल जिक्र की जमा, अजकार मुराकबे, ये सब चीज़ें जो हैं सिफत एहसान के लिए ही होते हैं। असल में हमारे बचपन में इस मज़मून को समझाने के लिए आमतौर पर हमारे असातिज़ा वाक़ा सुनाया करते थे, हम भी आपस में सुने हुए होंगे। जो चीज़ सुनी हुई होती है उसी को सुनाने से याद दहानी होती है, जो चीज़ सुनी हुई नहीं होती है उसको सुनाना याद दहानी नहीं होता, वो तालीम होता है। वो याद तो उसी को दिलाते जो पहले कभी सुना हुआ होता है। वो एक मुर्शद थे, उनके पास बहुत से मुरीदीन रहते थे खानखा में। ऐसी चीज़ों की मश्क करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको खानखा कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए जैसे स्कूल होता तरबियत की जगह, तालीम की जगह, बड़े आदमियों की जो तरबियत की जगह होती है उसको खानखा कहते हैं। पहले मुसलमान इसका बड़ा एहतमाम करते थे कि खानखाहों में जाके वक्त गुजार के बुज़ुर्गों के पास रह के आते थे, तो अपनी तरबियत करने के लिए बाज़ार तो वहाँ क़ियाम करना, खाना पीना वहीं होता था, रहना सहना वहीं, कोई 40 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई आके अपने शेख के पास बढ़ जाता था कि जब आप तक आप जब तक रहो बोले मैं रहूँगा, कोई लिमिट नहीं है। असल तरीका उसका वही है, तो भाई मेरी डॉक्टर जितने दिन रहो बोला दवाखाने में उतने दिन रहने का है ना, वक्त फारिग करके आ जाते थे, सालों खाली कर लेते थे, खानकाहों में रहते थे। पहले बड़ी बड़ी खानकाहें आबाद थी, बड़ा दौर गुजरा है मुसलमानों को। मुसलमान अपना बहुत कुछ भूले हैं, उसमें से ये भी चीज़ भूले हैं, खानकाही निज़ाम भूल गए। जब खानकाही निज़ाम भूल गए तो तरबियत भूल गए, तरबियत भूल गए तो पूरा इस्लामी ज़िंदगी तितर बितर हो गई। मुसलमान होने के बावजूद कोई इस्लामी अकदार, कोई इस्लामी सिफात, इस्लामी क्वालिटी वो बाकी नहीं रही उम्मत मुस्लिमा के अंदर। उसकी वजह वही है क्योंकि खानखा में ये चीज़ें पैदा की जाती थी। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानखा हमेशा आबाद रहती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानखा हमेशा आबाद रहती थी। तो उनके पास जो खाना पकता था आप उस अंदाज़ा फरमाइए, जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं उनको वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वहाँ पर जो देग बनी हुई है खाने की। मैं गया हूँ, बहुत मरतबा जाना हुआ है मेरा, 35 से ज़्यादा सीढ़ियों वाली, 35 से ज़्यादा स्टेप वाली सीढ़ी है जो देग में उतरने के वास्ते, मैंने खुद देखी है। देग क्या है, घर है समझो पूरा, और गहराई उसकी ऐसी है कि पूरी सीढ़ी अंदर उतर जाती है, आखिरी हिस्सा भी अंदर में चले जाता है उसका, कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ रहता वैसा नहीं, और कोई छोटी मोटी सीढ़ी नहीं है, 30-35 स्टेप की सीढ़ी है वो। उसमें खाना पकता था हजरत के पास, जो रहने वाले लोग होते थे उनके पास, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़ा लंगर था, उनकी खानकाह हमेशा आबाद रहती थी हजारों लाख। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनके दस्तरखान का रोजाना का खर्च 100 किलो नमक का था। 100 खाली नमक कोई भी नहीं खाता ना, 100 किलो नमक उनके दस्तरखान का खर्च रोज का था। और ये कौन लिखे हैं तारीख दावत और अजीमत में, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, वैसे ही खुश अकीदगी में लिखने वालों में से लिख दिया, वैसा नहीं है, मुहक्किक आदमी है, तारीखी शवाहिद के साथ लिखने वाले लोग हैं, पक्की बात लिखने वाले, एहतियात के बाद लिखने वाले लोग। बड़े लंगर होते थे पहले, इमारतें होती थी उनके लिए, औकाफ होते थे, बुजुर्गान दीन बड़े बड़े नवाब बड़े बड़े लोग वक्फ कर देते थे कि भाई खानखा के लिए वक्फ है, ज़मीनें वक्फ की जाती थी, जायदादें वक्फ की जाती थी, माल वक्फ किया जाता था कि भाई खानखा में रहने वालों की खिदमत के वास्ते। हज़रत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं, उनके साथ के हैं, बड़े अजीब बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के 80,000 खुलफा थे, अल बुनियादुल मुशय्यद में एक किताब है उनकी हिस्ट्री के ऊपर, किताब का नाम अल बुनियादुल मुशय्यद है, 80,000 खुलफा थे उनके। और अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं, इनका कोई जिक्र भी नहीं तो आप अंदाजा लगाओ अब्दुल क़ादिर जिलानी का क्या हाल था, जो पूरी दुनिया में इतने मशहूर हैं, जो गैर मशहूर आदमी उनके जमाने के हैं उनके खुलफा का ये हाल। मगर सैयद अहमद कबीर रिफाई बहुत ही अजीब गरीब बुजुर्ग थे, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनसे मुसाफे के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक कब्र से बाहर आया था, किताबों में लिखा बुनियादुल मुशय्यद में। और उस हज में हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे वहाँ पे, जिन लोगों ने सरकार के दस्ते मुबारक की ज्यारत की उनमें हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी भी थे, और मुसाफा हज़रत अहमद कबीर रिफाई से हुआ था। सैयद अहमद कबीर रिफाई हुजूर के ख़ानदान के, तो उन्होंने कहा था कि नाना जान मैं दूर से आपके पास हमेशा हाजिर ही रहता हूँ, मेरी रूह पूरी हमेशा आपके आपके खिदमत में खिदमत अक़दस में रहती है, लेकिन मैं अब आज आपके पास हाजिर हो गया हूँ तो कुछ इजाफा चाहता हूँ, ये कहा था उन्होंने, आज आपके दरबार में हाजिर हूँ तो मेरे साथ कोई खसूसी मामला फरमाइए। थे वैसे बुजुर्ग बेपना पहुंची हुई शख्सियत थे। तो दस्ते मुबारक बाहर आ गया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया था उन्होंने, आपके हाथ में बोसा दिया उसको, और उस वक्त जितने लोग मदीने मुनव्वरा में थे सब ने ज़ियारत की थी हुज़ूर के दस्ते मुबारक की, उसमें हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले खानकाहों का निज़ाम बहुत था, इस खानकाही निज़ाम से तरबियत जुड़ी हुई होती है, इस खानकाही निज़ाम से तरबियत जुड़ी हुई होती है, आदात बनती हैं, सिफात बनती हैं, इस्लाम में जान पड़ती है आदमी के, ईमान में जान पड़ती है आदमी के, हमारे इस्लाम में हमारा इस्लाम बेजान हो गया है, हमारा ईमान बेजान हो गया है, उसमें रूहानियत उसमें नूरानियत। हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में 11 साल तक मुजाहिदा करे मशक करने के लिए, और 11 साल तक गुल्लर खाते रहे, खाली गुल्लर खाते थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गुल्लर खाते थे। वो गुल्लर का पेड़ आज तक है उनके मज़ार के पास करीब में, छोटा सा फल का होता है। इस तरह की मशकों की ज़रूरत पड़ती है, असल कुछ अजकार करने होते हैं, कुछ अशगाल करने होते हैं, कुछ मुराकबे करने होते हैं, कुछ मुजाहदे करने होते हैं, औराद करने होते हैं, यकसुई हासिल करनी होती है, अपने वक्तों को फारिग करना, जैसे आज अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं ना, जमातों में निकालते हैं, वक्तों को फारिग करो उनके, तो पहले उस काम के लिए बाद में भेजते थे, खुद अपने लिए पहले फारिग करो कहीं जाए बगैर बोल के, पहले वो सिस्टम था। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि भाई मैं भी शेख हूँ, मतलब वो भी शेख थे और बहुत अजीब गरीब बुजुर्ग थे, वो कहा कि मैंने भी सोचा पहले शुरू में कि अगर मैं खानकाह जिंदा करके खानकाह के अंदर 100-150, 200-250, 300 आदमियों को जमा करूँ तो वो 200-300 का भला होगा, बकिया उम्मत का क्या होगा। उस वक्त तो इर्तदाद का फितना चल रहा था, लोग सब मुर्तद हो जा रहे थे, शुद्धि तहरीक जोरों पर थी, शुद्धि तहरीक बोले तो हिंदू जो है ना मुसलमानों को हिंदू बनाने की तहरीक चलाए हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये वो सब एक ही था जब, उस वक्त की बात है, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। तो उस मौके पर जो कोशिशें उलमा किराम कर रहे थे उसमें हज़रत इलियास साहब भी थे, जिनको अल्लाह ताला ने कबूलियत अता फरमाई उनके काम की कोशिश को, ख़ास तौर पर इस मामले में कोशिशें दूसरे उलमा की, दूसरे बुजुर्गों की, दूसरी लेनों में अल्लाह ने अलग से एतबा अलग से कबूल फरमाई। जैसे थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद गुजरे अपनी लाइन के, ये दावत की लाइन के मुजद्दिद हुए, तो फिर उन्होंने ये तय किया कि मैं लोगों में जाके उनको पहले उनके अंदर ईमान तो लाऊं, उसके बाद में तो जिक्र फिक्र के वास्ते लगेंगे ये लोग। ईमान ही जा रहा है तो फिर जिक्र फिक्र में कब लगेंगे लोग, वो मसला था। अगर मैं उसको लेकर बैठता तो 100-200-300 आदमियों के लिए जिक्र के आसार मुरतब हो जाना कुछ मुश्किल नहीं था, उनके मलफूजात में है। तो पहले यह था कि पहले खानकाह में रखते थे, हमारी जमात चाइना गई थी, वहाँ जिस गांव में जा रहे हैं इलाके हैं, बाज ऐसे इलाके हैं चाइना के अंदर कि वहाँ इस्लाम है ही नहीं, मुसलमान बहुत हैं इस्लाम नहीं है। हांगकांग की तरफ से जब दाखिल होते हैं, हांगकांग की साइड से, अब नाम याद नहीं रहे उस शहरों के, बिल्कुल मैं 1989 में गया था, तो वहाँ तो सूरत हाल ये है कि नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, लिबास नहीं, वज़ाकता नहीं, खाना पीना नहीं, शादी ब्याह में इस्लाम नहीं, गैरों से शादियाँ इनकी, इनसे शादियाँ गैरों की, खाना पीना कोई चीज़ नहीं, फिर वो अपने को मुसलमान बोलते हो लोग। हम बोले भाई कैकू मुसलमान बोलते, क्या हिसाब से मुसलमान बोलते अपने, मैंने किस बुनियाद पर, तो बोले हम पोर्क नहीं खाते। हमारे भाई बहुत पक्के मुसलमान हैं तुम लोग, जिस पे जिस धागे पे लटका हुआ आदमी उस धागे को भी तोड़ दिया तो कैसा, इससे क्या होता बोल के बोले तो गया, वो भी जाता था। नहीं बहुत पक्के मुसलमान हैं तुम लोग, मजबूत रहो इस पे बोलते थे। हालांकि शराब उनके हाथ में रहती थी, चाय से ज़्यादा सस्ती शराब, शादी ब्याह की कोई पाबंदी नहीं, जमात नमाज पढ़ी तो अतराफ से जमा हो जाते थे, क्या कर रहे हैं लोग बोल के, मुसलमान भी बोलते थे अपने को। एक इलाका वो है, एक इलाका उसे आगे की तरफ है जरा, वो बड़ा अजीब है। वहां ये है कि इतनी मस्जिदें हैं, इतने मदरसे हैं, मदरसों में पूरा अपना निसाब तालीम देवबंदी, पूरा अपना जो निसाब तालीम होता है मदरसों का, हमारे इंडिया पाकिस्तान के वही मदरसे का निसाब तालीम है, और सिलसिले के लोग हैं, और नक्शबंदी सिलसिले के लोग हैं। वहाँ पर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी का काम बहुत है, खैर चूँकि वो हम थोड़ा सा मुनासिबत है ना इस लाइन से, बुजुर्गों की बातों को सुनने सुनाने की आदत है, तो हमको भी याद था, तो हम भी जो है ना मुजद्दिद साहब की बातें शुरू कर दिया। तो पहले कोई बैठता ही नहीं था, उसके बाद में तो इमाम बोलता था खबरदार कोई उठ के गया था, बोले शेख आए हुए बोलते थे, तो पूरे लोग बैठ जाते थे क्योंकि मुजद्दिद साहब की बातें सुनाते थे, उनके मलफूजात सुनाना है। तो मैं वहाँ उन लोगों से पूछा कि तुम लोग नक्शबंदी कैसे हैं, मुजद्दिद अल-फ़िसानी के, तो बोले हमारे पास हजरत के बहुत खुलफा हैं, हमारे इलाकों में हजरत के खुलफा हैं। पहले ज़माने में आदमी को खानकाह में रख के तरबियत करके उसको इलाका दे के भेज दिया जाता था कि आपको उधर जाना है, तुम अपने जगह पर रह के काम करने के नहीं होते थे, चले जाना वो इलाके में जाओ, तो किसी को चाइना भेज दिया, किसी को उधर भेज दिया, किसी को उधर भेज दिया, ऐसा होता था। वहीं जाके रहना, वहीं बुदबाश अख्तियार कर लेना, ज़िंदगी वहीं गुजार देना, इस तरह तरबियत में काम करना। तो पहले आदमी में पुख्तगी और उसके ईमान में कमाल लाने के लिए, इस्लाम में कमाल लाने के लिए मेहनत कराते थे, सिफत एहसान डेवलप करते थे, इसको सिफत एहसान कहते, उसके बाद फिर उसको लगाते थे काम पे। अब वो काम करने में बहुत देर हो जा रही, उस वक्त जिंदगियां खराब हो जा रही, लोग ईमान से हाथ धो रहे हैं, बोल के दावत के काम में लगा रहे हैं, लेकिन दावत के काम में लगाने का मतलब आदमी ये समझ रहा है कि मेरे को इधर मेहनत ही नहीं करना है, ऐसा नहीं करने का है, वो करते हुए अपनी जात को फोकस करते रहना है, अपनी जात की मेहनत करना है, और अपने अंदर सिफत एहसान लाना है कि खलवत में, जलवत में, लोगों के दरमियान हो, तन्हाई में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, बाजार में हो, ऑफिस में हो, कमाने में हो, खर्च करने में हो, खाने पीने में हो, रहने सहने में हो, पहनने ओढ़ने में हो, ताल्लुकात में हो, दोस्ती में, दुश्मनी में, मोहब्बत में, नफरत में, सब चीज़ों में आदमी सिफत एहसान के साथ रहे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मेरे से करीब हैं, अल्लाह पाक मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक मुझे मुहीत हैं, क्योंकि कुरान पाक में खुले लफ्ज़ों में है ये बात, वह बिकुल शय मुहीत, वह हर शय को मुहीत हैं, वह माकुम नमाकुन तुम, वो तुम्हारे साथ हैं जहाँ कहीं तुम हो, जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ, नहन अकरब इलैहिम मिनकुम, नहन अकरब इलैहिम मिन हब्लिल वरीद, वलक़द खलक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमने पैदा किया इंसान को और हम जानते हैं कि जो उसका नफ्स वसवसे डालता है, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं, हम जो उस इंसान को जानते हैं, उसके अंदर बाहर को जानते हैं, वो तो जानते ही जानते हैं, नफ्स में बगैर बोले के जो वसवसे आते हैं वो हम जानते हैं, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम ज़्यादा करीब हैं उसके शहरग से भी, तो अल्लाह ताला सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि अकरब हैं, वह माकुम अल्लाह ताला साथ हैं, अइनमा कुंतुम जहाँ कहीं तुम हो, वह बिकुल्ली शय मुहीत, वो हर शय को मुहीत हैं, वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, वही जाहिर हैं, वही बातिन हैं। अइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुँह करो वहाँ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। क़िबले की तरफ मुँह करने का हुक्म तो एक मसलहत की खातिर दिया गया है, वरना अगर पीछे की तरफ मुँह करे तो अल्लाह ताला की तरफ मुँह नहीं होता ऐसी बात नहीं है, सीधी तरफ करे तो नहीं होता वैसी बात नहीं है, बाएं तरफ करे तो नहीं होता वैसी बात नहीं है। एक ख़ास मसले से क़िबले की तरफ मुँह करने का हुक्म है और पाबंदी है, नमाज जब भी होंगी जब क़िबले की तरफ मुँह होंगा। बाकी अल्लाह मियाँ की तरफ मुँह होने के वास्ते क़िबले की तरफ मुँह होना है, अल्लाह फरमा रहे ऐसी बात नहीं है। आए नमा तो बोलो फसम्मा वजुल्ला, जिधर भी मुँह करोगे उधर अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक मिलेगी आप। एक पादरी ने एक आलिम साहब से पूछा था कि अल्लाह मियाँ का मुँह किधर है, तो उन्होंने कहा कि एक मोमबत्ती जला के ला, उसने मोमबत्ती जमा जला के लाया तो उससे पूछे अब इसका मुँह किधर है बोल, मोम का जो शमा जल रही थी ना, लौ जो जल रही थी उसकी, बोले इसका मुँह किधर है, तो बोले इसका मुँह किधर है चौतरफ है, शमा का मुँह किधर रहता है जो उसकी लौ जो है उसका मुँह किधर रहता है चौतरफ रहता है, तो बोले इसका मुंह चौतरफ है, तो बोले एक शमा का मुंह मुखर नहीं कर सकता चौतरफ बोल रहा, अल्लाह मियाँ का मुंह किधर है पूछ रहा। ऐन वतुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तो अल्लाह का साथ होना, अल्लाह तबारक व तआला का करीब होना, अल्लाह तबारक व तआला का अकरब होना, अल्लाह तबारक व तआला का मुहीत होना, अल्लाह मुहीत है और मुहीत भी ऊपर से कवर करके, जैसे वो बड़े एमएनएम आते हैं कि अंदर से मूंग की फली है ऊपर से चॉकलेट भरी हुई है शक्कर लगी हुई है, एक वो मुहीत है ना, मगर अंदर से तो नहीं है ना, वो मूंगफली के अंदर तो नहीं है ना, अल्लाह तबारक व ताला वैसे मुहीत है, ऐसे हर शय को मुहीत है, अंदर बाहर सबसे मुहीत है वो, अल्लाह ताला का अहाता अलग ही है, वो उनका अहाता भी हमारी समझ में आसानी से नहीं आता, मगर तकरीब फहम के लिए समझ के करीब होने के लिए हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल बयान फरमाई थी। एक साहब ने सवाल किया था उनसे, तो हजरत सूफी साहब के सामने बिस्किट थे रखे हुए, सूफी साहब बोले तो हमारे पीर वाले साहब भी हैं पीर भी, तो एक सवाल किया उनसे कि अहाते का मतलब समझ में नहीं आता कि अल्लाह मुहीत है, वो कैसे मुहीत है, तो सामने बिस्किट रखे हुए थे उस्मानिया बिस्किट, ये मोटे होते ना, हजरत के सामने हजरत के पानी पी रहे थे, उनके हाथ में गिलास था पानी का, वो बिस्किट के ऊपर डाल दिए, डाल के बोले पानी कहाँ गया, तो बोले बिस्किट में कहाँ है, चूंकि वो उस्मानिया बिस्किट मोटी भी होती है और पानी तो जस्ट फौरन हो जाता है उसमें, चूंकि वो दुरदुरी होती है ढीली होती है, ऊपर भी अंदर भी जाहिर भी बातिन भी, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जिसके बारे में कह सके आपको पानी नहीं है वहाँ, क्योंकि वो तो पूरा अंदर सराजित कर गया यहाँ से वहाँ तक। तो फिर हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर लतीफ़ चीज़ हर कसीफ़ चीज़ का ऐसे ही अहाता करती है, क्योंकि बिस्किट के मुकाबले में पानी लतीफ़ है इसलिए वो अहाता कर ली उसने, और कैसा अहाता, खाली ऊपर से कवर कर लिया ऐसा नहीं है, अंदर से भी है, उसके रग रग में उसके जूस जूस में उसके एक एक पार्ट में घुस गए ना, घुस गया पानी, तो पानी लतीफ़ है और बिस्किट कसीफ है ठीक चीज़ है, उसके अंदर जब ये चीज़ सराहियत करती है तो ऐसा हावी हो जाती है, और अल्लाह तबारक व ताला तो लतीफ़ों के लतीफ़ों के लतीफ़ों के लतीफ़ हैं, और वह लतीफ़ुल ख़बीर, तो उनकी सराहियत उनके अहाते का क्या 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 आलम होगा, वो हर शय को मुहीत हैं, हर इंसान को मुहीत हैं, हर दीवार को मुहीत हैं, हर जानदार को मुहीत हैं, हर बेजान को मुहीत हैं, हर पत्थर को मुहीत हैं, आसमान को मुहीत हैं, ज़मीन को मुहीत हैं, सूरज को मुहीत हैं, चाँद को मुहीत हैं, सितारों को मुहीत हैं, कवाकिब को मुहीत हैं, सवाबित को मुहीत हैं, आसमानों को मुहीत हैं, जन्नत को मुहीत हैं, जहन्नम को मुहीत हैं, पहाड़ों को दरियाओं को, वो तो वह बिल्कुल ही वो तो बोल रहे हर शय को मुहीत, जो चीज़ शय है उसको मैं मुहीत हूँ, तो ये सब तो शय ही हैं, कायनात का जर्रा जर्रा शय है, इशारा जिसकी तरफ किया जाता है वो शय कहलाता है, मायूशारू इलैह, इशारा हिस्सी को कबूल करे तो वो शय हिस्सी कहलाती है, इशारे मानवी को कबूल करे तो वो शय मानवी कहलाती है, वो हर शय को मुहीत है। तो ये सिर्फ ये इसकी जो है ना मशकें होती हैं, तो खानकाहों में इसकी मशकें कराते थे, तो खानकाह में एक नया मुरीद आया, शेख की तवज्जो उस पर ज़्यादा होने लगी, मतलब ज़्यादा प्यार नज़र आने लगा, मोहब्बत नज़र आने लगी, ताल्लुक़ नज़र आने लगा उनके साथ में, तो दूसरे लोगों को ज़्यादा जलेसी हो गई, अच्छा नहीं दिखा कि हम इतने ज़माने से पड़े हुए हमारी तरफ हजरत की नज़र नहीं है, ये नया नया अभी आया है इस पर मेहरबानी है, तो हजरत ने फरमाया कि भाई देखो हमारे पास मेहमान आने वाले हैं, उनकी मेजबानी करना है, तो मैं आप लोगों को एक काम लगा रहा हूँ, तो हर एक के हाथ में जो है ना एक एक छुरी और एक एक मुर्गी दे दी, और ये फरमाया कि इसको ले जाओ और ऐसी जगह जुबा करके लाना जहाँ पे कोई नहीं देख रहा, वहाँ से मुर्गी जल्दी जुबा करके लाओ, सब मिला के पकाने का है, मेहमान आने वाले हैं। तो खुशी खुशी लेके चले गए मुरीदीन जो थे खानखा के अंदर, बहुत सी मुर्गियाँ तकसीम की गई, वो काटे कोई कमरे के अंदर ले जाके, कोई जंगल के अंदर ले जाके, कोई पत्थर के पीछे ले जाके, कोई इधर ले जाके, कोई उधर ले जाके, जल्दी काट के लाए, मेहमान आने वाले हैं, पकना है गोश्त। ये जो नया आया हुआ था ना, ये जिंदा मुर्गी लेके आ गया, तो अब शक्ल बना के नाराजगी जाहिर करे हजरत उसके ऊपर, ये क्या बदतमीजी है, अभी तुम्हारी वजह से सारा काम डिले हो जाएगा, तुम मुर्गी काट के लाओ बोल के, बोले आपको एक ऐसी जगह काट के लाओ बोले जहाँ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो हमारे पास जो मेहमान आने वाले हैं इधर वो ऐसे ही खाते हैं, तो फिर तुम्हारे से इतना काम नहीं हुआ, अब नाराज हुए उस पर शो करने के वास्ते, खाली शोविंग में नाराज हो रहे थे, अंदर से नहीं थे नाराज। तो उन्हें बुरी दे बोला कि हजरत मैं माफी चाहता हूँ, आपने ये फरमाया था कि जहाँ कोई ना देखे वहाँ जुबा करके लाओ बोले, अब मैं जहाँ जाता था वहाँ जाके सबसे पहले ये सोचता था कि यहाँ कौन देख रहा है, तो मुझे फौरन पता चल जाता था कि यहाँ एक देख रहा है, जहाँ भी मैं अंधेरे में गया तो देख रहा है कोई, वो अल्लाह पाक है, मैं पत्थर के पीछे गया तो देख रहा है कोई, वो अल्लाह पाक है। आपने ये नहीं कहा कि सिवाय अल्लाह के, आपने तो कहा कि जा ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई नहीं देख रहा हो, तो आपने अल्लाह ताला अल्लाह का भी एक्सेप्शन नहीं किया, इस्तेसना नहीं किया, तो इस वजह से मैं नहीं काट सका, मजबूर हूँ मैं, आप बोले आप जो शर्त लगाए थे वो शर्त पूरी नहीं कर सक नहीं हो रही थी, इसलिए मैं नहीं काट सका इसको, चूंकि आपने बोला था ऐसी जगह ले जाके काट के लाओ जहाँ कोई ना देखे। बस शेख ने फरमाया कि आज कोई मेहमान उमान नहीं आ रहा, बस ये दिखाने के वास्ते ही ये काम हुआ था, ये ड्रामा किया गया था कि इसको मैं क्यों ज्यादा चाहता हूँ, इन्हें है नया मगर पुरानों से आगे निकल गया, वो है नया लेकिन पुरानों से आगे निकल गया कि सिफत एहसान जम गई इसकी, इसको सिफत एहसान हासिल हो गई कि अब उसको बोले कि ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई नहीं देख रहा, बोले अल्लाह पाक तो देख ही रहा सब जगह, अंधेरे में उजाले में खलवत में जलवत में नजदीक दूर जंगल में शहर में कहीं पे भी गए तो अल्लाह पाक तो है देखने का। तो जब अल्लाह तबारक व ताला के देखने का, अल्लाह ताला के सुनने का, अल्लाह ताला के जानने का, अल्लाह तबारक व ताला के हाजिर होने का, मौजूद होने का ध्यान जो है ना किसी बंदे या बंदी को हासिल हो जाता है, तो उसके गुफ्तार में, उसके किरदार में, उसके अमल में, उसके यकीन में, उसके काम में, सब में ख़ास किस्म की क्वालिटी आ जाती है। वो सीखना है ईमान वाले को और इस्लाम वाले को, ताकि उसके इस्लाम का हर काम कमाल के साथ हो जाए, सही हो जाए, बिल्कुल जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं, पूरे आदाब, पूरे सलीके, पूरी तमीज़, पूरे ध्यान के साथ, और ईमान भी उसका भी वैसे ही हो जाए कि जब अल्लाह तबारक व ताला की सिफत के बारे में सिफत एहसान होगा तो जो उनकी सिफतें हैं वो भी कायम हो जाएंगी सामने। जब अल्लाह तबारक व ताला देख रहे हैं तो अल्लाह अपनी सिफतों के साथ हैं, ये थोड़ी कि सिफतें उठा के रख के आए, उनका जानना, उनका सुनना, उनका देखना, उनकी हिफाजत, उनकी रुबूबियत, कितना ताकत आदमी अपने अंदर महसूस करेगा, उनकी हिफाजत, कितना आदमी अपने आप को महफूज महसूस करेगा। अगर अल्लाह तबारक व ताला के मुहाफिज होने का यकीन आदमी को हो तो जैसे छोटे बच्चे को अपने माँ बाप के मुहाफिज होने का यकीन होता है तो जाके उनको चिमट जाता है तो कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम। छोटे बच्चों में लड़ाई हो जाए, माँ बाप फौरन आ जाए, उसने माँ को पुकारा, बाप को पुकारा, वो आ गए और उसने गोद में उनको लपट लिया, तो वो बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा हो जाता है एकदम। हमारा अल्लाह ताला पर भरोसा, अल्लाह पर नजर, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह ही से डर, अल्लाह के गैर का डर खत्म। मुसलमान को अगर ये इल्म याद हो गया तो ये जो मुसलमान गैरों से डर रहा है ये कहाँ से डरेगा, गैरों का खौफ खत्म हो जाए। गैर डरा रहे हैं, गैर मुस्लिम डरा रहे हैं, मरऊब कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और अगर हम डर गए तो हो गया। भरोसा अल्लाह पे, जो चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं है उसमें अल्लाह पे भरोसा ही काम करता है। असल इलाज अल्लाह पे भरोसा होता है उन चीजों में जिसमें जो आदमी के बस में नहीं है। भरोसा कैसा है, अब ये कोरोना है, कोरोना में असल काम क्या है, असल एहतियात क्या है, असल एहतियात अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह से अच्छा गुमान करना, अल्लाह पे भरोसा रखना कि अल्लाह बस आप ही बचाने वाले हैं। मास्क लगा लेना अपनी जगह पर है, लगा लो, हुकूमत बोलती है लगा लो, अपने तौर पर समझ में आती है बात, लगा लो, लेकिन कहाँ तक बचेंगे आप। एक आदमी दरवाजे को हाथ लगा के आया, आप भी दरवाजे को हाथ लगा के आए, मुंह मास्क बराबर है, उन्हें कोरोना का इफेक्टेड है, काम तो हो गया, मास्क लगा लेके नमाज पढ़े आप। एक दूसरा आदमी वहाँ बैठ के गया था, इन्हें इफेक्टेड था, आप जाके फिर वहाँ बैठ गए, आपके पैर उसके पैरों पर आ गए, आपके हाथ उसके हाथों के नीचे आ गए, आपकी परेशानी उसकी परेशानी को लग गई, उन्हें तारत को गया था, अपनी तारत को जाके आ गए, कहाँ से बचते क्या है कहीं। असल इसमें अल्लाह का हुक्म है, ईमान है कि बीमारी जो है ना वो हुक्म जदीद से आती है हर एक को। एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती इस्लाम में। कोरोना में एक इस्लाम का तस्वुर है और एक गैर मुस्लिम का तस्वुर है, दोनों में फर्क है, ध्यान में रखना हमेशा। एहतियात दोनों करते हैं, एहतियात ईमान वाला भी करेगा, एहतियात बेईमान वाला बेईमान भी करेगा, लेकिन ईमान वाले के एहतियात में बेईमान की एहतियात में जमीन आसमान का फर्क है। ईमान वाले के पास ये होता है कि एक को लगने के बाद में दूसरे को ऑटोमेटिक नहीं लगता, ईमान इसका इनकार करता है। ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं होता। अल्लाह मियां एक को लगाना चाह रहे थे, लग गया दस को, वल्ले क्या हुआ भाई फिर? अरे मैं तो एक को बीमार करना चाह रहा था, दस बीमार हो गए, मेरा प्लान गड़बड़ हो गया। बोले ये क्या बात, कैसे अल्लाह पे ईमान लाए भाई? एक को उन्होंने बीमार करे तो एक ही बीमार होगा, दस को बीमार करे तो दस ही बीमार होंगे, एक को बीमार करे तो दूसरा नहीं हो सकता, दस को करे तो नौ नहीं हो सकते। अल्लाह पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। उनके इरादे का नाम वजूद है, फ़ालुल लिमा युरीद है, वह हुक्मु मा यशा है। तो दूसरा जो बीमार होगा वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हुक्म जदीद से, नए हुक्म से होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊँटों को खारिश हो गई। आपने पूछा इन ऊँटों को क्या हुआ? फरमाया हज़रत खारिश हो गई, ऊँटों को खारिश की बीमारी लग जाती, यानी वो खारिश के एतबार से बीमार होते हैं। तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि हज़रत एक को लग गई थी, वो सब में फैल गई, एक को लग गई थी सब में फैल गई। आपने फौरन तरबियत फरमाई, मुतवज्जे फरमाया असल मंशे की तरफ, और फरमाया कि वो जो एक को लगी थी ना वो उसको किससे लगी थी, पहले वाले को जो लगी थी उसको किससे लगी थी, किससे लगी थी? उसको तो किसी से नहीं लगी थी, उसको अल्लाह के हुक्म से लगी थी। उसने फरमाया मन अजरब अल्वल, पहले वाले को किसने खारिश थी किया था? अल्लाह ने किया था। तो फिर दूसरे को कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा। तीसरे को कौन करेगा? अल्लाह। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक लगेगा, असबाब फैले हुए होते हैं, लेकिन उन असबाब में मुसबब का मुरतब होना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर है। और ऐसी चीजों में जिनके अंदर तदबीरें काम नहीं करती हैं, और तदबीरें इंसान के बस में नहीं होती, उसमें सबसे बेहतरीन तरीके का तवक्कुल है, अल्लाह पे नजर है। आसेब उसके असरात में तवक्कुल है, नजर है उसके असरात में तवक्कुल है, जिन्नात के असरात, ये असरात वो असरात जो होते ना उसमें तवक्कुल, मुसीबतों का नाजिल होना, सफर का महीना मनहूस है बल्कि बोलते ना, सफर में मुसीबतें नाजिल होती, तेरा तेजी करो, हैदराबाद के कौन कौन है, तेरा तेजी हमारे पास, तेरा तेजी करो बल्कि सुबह सुबह फजर में 4 बजे से पिका, तेरा सफर को, तेरी सफर की 13 तारीख को जो है रात में 2 बजे रात से फिरना शुरू हो जाते, तेरा तेजी करो, यानी 13वीं तारीख को मुसीबतें नाजिल होती हैं और उसका सदका निकालो। तो अब सदका निकालना कैसा, उनमें भी बड़े बड़े माहिर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं फकीरों में भी, बोले क्या करेंगे यार, कौन सा सदका निकाले बोले तो लोगों क्या निकालो बोलेंगे, तो बेहतर तरीका ये है कि अंडा निकालो बोलेंगे, अंडा तल के खाने आ जाता। तो तेरा तेजी करो बोले तो सुबह अंडे रख के रात में सिखा दिए कि रात में अंडे रखना सराहने, उसके अंदर मुसीबत उतर जाती जो आज रात में उतरने वाली है, वो हमारे को सदके में दे देना। अच्छा खाली अंडे लेके क्या करेंगे रहते? तो बोले तेल रखना उसके साथ, तो अंडे के साथ प्याली में तेल भी रखना पड़ रहा, तो थोड़ा तेल देना पड़ता ना, चूंकि बगैर तेल के तलेंगे कैसा उसको। अच्छा सारी मुसीबत जो है ना वो अंडे में उतर जाए तो हम लोग तल के खा लेते हैं मुसीबत को। खैर वो तेरा तेजी करो ये मुशरिकीन के जमाने में पाया जाने वाला अकीदा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मा मिन्ना इल्ला वा अन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। हमारे जमाने में, जमाने शिर्क में भी इस किस्म का अकीदा था कि सफर के महीने में मुसीबतें नाजिल होती हैं, मगर हम अल्लाह पे भरोसा करने से अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया। वसवसे हमको भी सताते हैं कि ये मुसीबत ना जाए, वो मुसीबत ना जाए, अल्लाह पे भरोसा करने से अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देता है। हमारे एक दोस्त हैं, कभी उनकी जिन्नात से बातें हो जाती हैं, तो उन्होंने पूछा उनसे कि तुम लोग किसको नहीं सता पाते? तो कहने के जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है उसको नहीं सता पाते, ये उन्होंने कहा, जो अल्लाह पे भरोसा करता है उसको हम नहीं सता पाते। और एक बात बड़ी अजीब उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो सुन्नतों का पाबंद होता है उसको नहीं सता पाते, जो सुन्नत का एहतमाम करता है उसको हम नहीं सता पाते, ये बाज़ाब्ता इक़रार किया है। तो गर्ज ये है कि बात कोरोना पे निकल आई, तो करुणा में असल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आले पर भरोसा है, और तमाम उमूर में मामलात में असल अल्लाह पे ही भरोसा, अल्लाह ताला से मदद लेना होता है। तो गर्ज ये है कि ये जो तीसरा शोबा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया जब हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने पूछा कि अमल एहसान एहसान क्या है, तो फरमाया कि अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा फैलम तकुन तराह फैनू यरा का, इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अल्लाह पाक को देख रहे हो, इसलिए कि अच्छा कि तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो लेकिन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। जब अल्लाह पाक तुम्हें देख रहा है तो फिर ये सोचना कि तुम अल्लाह के देख रहे हो, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कुछ मुश्किल नहीं। और जब अल्लाह ताला गोया देख ही रहे हैं तो उनके सामने जो काम होता है वो बड़े अदब से तौर तरीक से होता है, वो भी अल्लाह तबारक व ताला फहम अता फरमा देते हैं, उसकी हिकमत अता फरमा देते हैं कि वो काम कैसे करना है, मतलब बहुत ही अदब से सलीके से काम करना है, जो आदाब हैं काम के जो तरीके मुकर्रर हैं उनकी रियायत के साथ, सुन्नतों की रियायत के साथ, मुस्तहबात की रियायत के साथ, तरीक़ेकार के साथ, ध्यान के साथ, हाजिर दिमागी के साथ, हुजूर कल्ब के साथ, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इसकी तालीमात होते हैं, इसके मशवरे होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है और बार बार के इस सिलसिले में मुजाकरे होते हैं, तो फिर ताला शानू इस सिफत एहसान की दौलत से भी मालामाल करते हैं, और फिर जब ये चीज़ आती है तो ईमान में भी कमाल आता है, इस्लाम में भी कमाल आता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।